मेरा सवाल एक सूरह बकरा की आयत नंबर 62 है, जिसमें है कि जो लोग ईमान लाए या जो यहूदी हुए, जो नसारा हुए या जो सहाबी कहलाते हैं, उन लोगों ने अगर अल्लाह को माना और आखिरत के दिन को माना और नेक अमल किए तो उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है,
उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना कोई
ना कोई।
जी ठीक।
और सर मेरा सवाल ये कि इस आयत को सामने रखते हुए क्या रसालत का इकरार जो है वो जरूरी नहीं है? क्या अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना जरूरी नहीं है या उसके फरिश्तों पर ईमान लाना
जी ठीक है? सवाल बिल्कुल क्लियर है। जी जावेद साहब,
तो आपने ऊपर जितने मजाहब का नाम गिनवाया वो सब रसूलों को और किताबों को मानने वाले हैं, उनको कहा गया। ये नहीं कहा गया कि इंसानों में से जिसने ये काम किया, ये कहा गया है कि वो लोग के जो मोहम्मद रसूलल्लाह पर ईमान लाए हैं, वो लोग के जो मजूस हैं, वो लोग के जो यहूदी हैं, वो लोग के जो नसरानी हैं, वो तो सारे ही रसूलों को मानने वाले, किताबों को मानने वाले, फरिश्तों को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे ही है जैसे मैं ये कहूं कि मुसलमानों तुमको आखिरत की जवाबदेही के लिए तैयार रहना चाहिए।
एक मिनट, अगर आप ये फरमा देंगे वो सारे रसूलों को मानने वाले किताब, तो इसका मतलब वो सारे तो फिर आखिरत को भी मानने वाले हैं। लेकिन इस आयत में स्पेसिफिकली कहा गया कि अगर तुम आखिरत को मानते हो वो तो मानने वाले हैं आखिरत को, तो अगर वो आखिरत को मानने वाले हैं फिर भी आयत में कहा गया अगर आखिरत को मानते हो तो इसी तरह रसूलों अच्छा, का भी कहना चाहिए।
अच्छा सवाल किया आपने। असल में रसूलों के साथ निस्बत या उनको मानने के बाद हमारी शनाख्त बनती है। मसलन हम में से जिस आदमी को भी आप पूछेंगे मैं मुसलमान हूं, मुसलमान किसे कहते हैं? मोहम्मद रसूलल्लाह को मानने वाला है। अब मुझे ये कहना है कि खुदा के बंदे खुदा को सच्चे दिल से मानो, अच्छा अमल करो, आखिरत की जवाबदेही के लिए तैयार हो जाओ, इसके बगैर निजात नहीं होगी। तो वहां पर जो आगे बयान किया गया है वो इब्तदाई ईमान नहीं है बल्कि हकीकी ईमान है। यानी वो लोग ये जो पैगंबरों की उम्मतें हैं उनका नाम लेके कहा है कि उनको हकीकी ईमान अल्लाह पर लाना है। वैसे तो वो सारे अल्लाह को भी मानते हैं, हकीकी ईमान सच्चा ईमान अल्लाह पर लाओ, अच्छा अमल करो और क्यामत के दिन की जवाबदेही के लिए तैयार हो, यही दीन की दावत है। तो पैगंबरों की उम्मतों को वहां खिताब करके ये कहा गया है कि पैगंबरों को महज मान लेने से, उनसे ताल्लुक पैदा कर लेने से निजात नहीं होनी। निजात अल्लाह पर सच्चे ईमान, आखिरत पर सच्चे ईमान और अच्छे अमल से होनी है। ये बहुत
जो हकीकी ईमान लेके आएगा तो सर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंकार कैसे करेगा?
ये एक दूसरा सवाल है। यानी यह अब रिसालत का सवाल नहीं है, ये सवाल ये है कि जो यहूदी हैं, जो नसरानी हैं या दूसरे मजाहब के मानने वाले लोग हैं इस वक्त जो अपने आप को कहते हैं, तो उन लोगों के अब मोहम्मद रसूलल्लाह के बारे में क्या मामला होगा? तो जिस आदमी को भी आप किसी पैगंबर की दावत पहुंचाएंगे और वो जानते बूझते उसका इनकार कर देगा वो तब मुजरिम होता है। तो वहां जरायम नहीं बयान हो रहे हैं।
अच्छा।
यानी वहां ये बयान नहीं हुआ कि ईमान अल्लाह पर भी ले आए, आखरत पर भी ले आए, कत्ल कर दिया तो फिर क्या होगा? अब मालूम है ना, कुरान में कहा गया है कि अगर कोई बंदा है मोमिन, सच्चा मोमिन, वो किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे तो हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब ये वहां नहीं बयान हुआ।
जी।
तो किसी सच्चे पैगंबर को सच्चा पैगंबर मानते हुए इसका इनकार करना ये मिन जुमला जरायम है।
ठीक है, ठीक है जी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो यहूदी होंगे उन पर तो इत्माम हुज्जत हुआ ही था ना, उनको तो पता था कि ये अल्लाह के सच्चे नबी।
जी, उन पर इत्माम हुज्जत जब हो गया फिर उनको सजा भी दी गई, उनको दुनिया में भी सजा दी गई, उनको आखिरत में भी सजा मिलेगी। लेकिन जब इत्माम हुज्जत हो गया, ये गुफ्तगू जिस वक्त हो रही है उस वक्त इत्माम हुज्जत की इब्तदा हुई।
ठीक।
वो इत्माम हुज्जत होने के बाद फिर सूरह तौबा नाजिल हुई और सूरह तौबा में फिर ये बताया गया कि अब इनके साथ क्या करना है।